आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर है। बड़ी सियासी पार्टियों के सीनियर लीडर मुल्क भर में रैलियों और रोड शोज के जरिए वोटरों को रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह ने कबायलियों को बुनियादी हकूक का यकीन दिलाया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कबायली लोगों के लिए एक खसूसी बजट का वादा किया है। महकमा मौसमियात ने मगरबी बंगाल के तराई वाले इलाके और उड़ीसा के लिए इंतहाई गर्म लहर के हालात के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। शिमाल मगरबी भारत में बारिश होने का इम्कान है। ईरान ने जब्त किए गए तिजारती जहाज के भारतीय अमले को कौंसिलर रसाई की इजाजत दे दी है। इस जहाज के अमले को जल्द ही रिहा किया जा सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम अपने पूरे उरूज पर है। बड़ी सियासी पार्टियों के सीनियर रहनुमा मुल्क भर में रैलियों और रोड शो के जरिए वोटरों को रागिब करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इस मरहले के तहत 7 मई को 10 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम 2 इलाकों के 95 पार्लियामानी हलकों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में कुल 1351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। वजीर आजम और बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 4 रैलियों से खिताब करेंगे। वो उन हलकों में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे जहां 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। आज सुबह जनाब मोदी बेलगावी में एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इसके बाद वो उत्तर कन्नड़ लोकसभा हलके में सिरसी पहुंचेंगे और दोपहर को एक रैली से खिताब करेंगे। इसके बाद बीजेपी के सीनियर रहनुमा देवांगिरी पहुंचेंगे और दोपहर के बाद इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे और शाम को बिलारी से दिन की आखिरी रैली से खिताब करेंगे। इससे पहले जनाब मोदी ने कल रात को गोवा में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि गोवा एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की अक्कासी करता है।
गोवा भारत भक्तों की भूमि है। हम भाई हेमंत सुमन जैसे सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने यहाँ विदेशी सरकार के सेक्रेटरिएट पर तिरंगा फहराया था। ये धरती जगन्नाथ राव जोशी जैसे सत्याग्रहियों की धरती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत ही सुंदर तस्वीर गोवा में दिखती है और इसलिए पूरी दुनिया के लिए गोवा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
उन्होंने मजीद कहा कि ये चुनाव एनडीए के जरिए उमंगों को पूरा करने के नजरिए और आईएनडीआईए के दरमियान इंतखाब का मजहर है जो अकरबा परवरी लालच और खानदानी सियासत को बढ़ावा देता है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कल टाडापल्ली पार्टी दफ्तर में 2024 के आम इंतखाबात के लिए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि रियासती हुकूमत ने 2019 इंतखाबात के मंशूर में किए गए वादों में से 99% वादे पूरे किए हैं। जनाब रेड्डी ने यकीन दहानी करवाई कि अगर वो दोबारा इक्तदार में आए तो सभी फलाही स्कीमें जारी रहेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन को दी जा रही मौजूदा मदद की रकम 75,000 रूपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रूपये कर दी जाएगी। ये इंतखाबी मंशूर अगले 5 सालों के लिए रियासत में ज़राअत, तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे और मुख्तलिफ बिरादरियों की फलाह बहबूद समेत वाईएसआर कांग्रेस के तरक्याती नजरिए की अक्कासी करता है। वहीं उत्तर प्रदेश में आज जबरदस्त तशहीरी मुहिम देखने को मिलेगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा अमित शाह कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। साथ ही वो कानपुर में पार्टी ओहदेदारों से आम इंतखाबात के तनाजुर में तबादले ख्याल भी करेंगे। इसके अलावा सीनियर बीजेपी रहनुमा और वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी बरेली, बदायूं और एटा जिलों में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी बरेली में पार्टी उम्मीदवार के लिए तशहीरी मुहिम चलाएंगे। जनाब यादव संबल जिले में भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। गुजरात में सियासी मुहिम जोरों शोर से जारी है। सीनियर बीजेपी रहनुमा और मरकजी वजीर राजनाथ सिंह आज बीजेपी उम्मीदवार के हक में इंतखाबी तशहीर करेंगे। जनाब सिंह आज सुबह अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे और बाद में वो खम्बर्ट और भावनगर में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ सीनियर कांग्रेस रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी आज रियासत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। जनाब सिंघवी भी अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी कल पाटन में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। तेलंगाना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम लोकसभा इंतखाबात में रियासत में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की हिमायत कर रही हैं। सीपीआईएम रहनुमाओं ने कल पीसीसी सदर और वजीर आला रेवंत रेड्डी के साथ इस सिलसिले में बातचीत की। दोनों पार्टियों ने भोंगीर को छोड़कर इंतखाबी मैदान से खुद को अलग कर लिया है। सीपीआईएम ने सिर्फ भोंगीर से अपने उम्मीदवार को उतारा है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि उन्होंने सीपीआईएम के रहनुमाओं से बात की है और उनसे गुजारिश की है कि वो भोंगीर के साथ साथ दीगर सभी पार्लियामानी हलकों में कांग्रेस की हिमायत करें ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वोटों का बंटवारा ना हो। ताहम ये देखने वाली बात होगी कि सीपीआईएम भोंगीर से अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेती है या नहीं, क्योंकि कल अपना नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने गुजरात में पोरबंदर भरूच और पंचमहल में इंतखाबी रैलियों से खिताब किया। कल पंचमहल में एक रैली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगर बीजेपी दोबारा इक्तदार में वापस आती है तो उसकी हुकूमत यकसां सिविल कोड नाफिज कर देगी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की कयादत में बीजेपी हुकूमत ने भारत को दहशतगर्दी से निजात दिलाई है। जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी हुकूमत गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों समेत माशरे के सभी तबकों की तरक्की के तई पुरअज्म है। भड़ोच में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में कबायली लोगों के लिए न सिर्फ बजट तखमीने में इजाफा किया है बल्कि उनके लिए तालीम और सेहत की सहूलियात में भी इजाफा किया है। उन्होंने अवाम को यह भी यकीन दिलाया कि बीजेपी हुकूमत कबायलियों के बुनियादी हकूक और उनसे नहीं छीनेगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने वलसाड़ जिले में धर्मपुर में एक रैली से खिताब किया जहां उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर गुज़श्ता 10 साल में गरीबों और कबायलों के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी इकतदार में आती है तो वो कबायली लोगों के लिए खसूसी बजट मुख्तस करेगी और गरीबों किसानों और पिछड़े हुए लोगों के लिए की भलाई के लिए काम करेगी। लोकसभा इंतखाबात में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अहम हलकों का जायजा लेने के सीरीज के तहत आज हम गुजरात के गांधीनगर पार्लियामानी हल्के पर एक खसूसी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
गांधीनगर लोकसभा हलका रियासती राजधानी बनाए जाने के बाद गुज़िश्ता 3 दहाइयों से बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। ये हलका 7 असेंबली सीटों पर मुश्तमिल है जिनमें अहमदाबाद की 5 और गांधीनगर जिले की 2 सीटें शामिल हैं। इस सीट पर 1989 के बाद से बीजेपी के उम्मीदवार ने लगातार कामयाबी हासिल की है। लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट से सबसे नामवर एमपी रहे हैं जिन्होंने 1998 से 2014 तक इस सीट पर लगातार कामयाबी हासिल की है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मौजूदा मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने इस सीट से चुनाव लड़ा और 5 लाख से ज्यादा वोटों से शानदार कामयाबी हासिल की थी। अमित शाह इस मरतबा भी लोकसभा की इस सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से कुल 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के सोनाल पटेल भी शामिल हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 21,82,000 से ज्यादा वोटर्स के जरिए किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। ईरान ने कल कहा है कि पुर्तगाल के परचम बरदार जहाज के भारतीय अमले को कौंसिलर रसाई की इजाजत दी जा रही है। इस जहाज को 2 हफ्ते पहले ईरानी फौजों ने अपने समुद्री इलाके में जब्त कर लिया था। ईरान की वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाज के अमले की रिहाई पर गौर कर रही है। इससे पहले जुमेरात को वजारत खारजा तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि बाकी 16 भारतीय अमले की वापसी में तकनीकी मामले हैं। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारतीय अफसरों ने जहाज के अमले के साथ मुलाकात की थी और वो कुनबों के साथ लगातार رابطے میں ہیں. اس ماہ کے شروع میں ایران کے نیم فوجی انقلابی جہاز نے اس جہاز کو ضبط کر لیا تھا. اس کنٹینر جہاز کو جس پر پرتگال کا پرچم لگا ہوا تھا ایران اسرائیل کے درمیان سلسلے وار حملوں کے نتیجے میں ضبط کیا گیا تھا. عراقی پارلیمنٹ نے ہفتے کے روز ایک قانون کو منظوری دی جس کے تحت ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیا گیا ہے. اس قانون کے تحت ہم جنس پرستی پر 15 سال قید کی سزا ہوگی اور ہم جنس پرستی اور قہبہ گری کو بڑھاوا دینے والوں کو کم از کم 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. چین کے گوانگزو میں ہفتے کے روز آئے طوفان میں کم از کم 5 افراد کی موت ہو گئی اور متعدد افراد زخمی ہو گئے. اس طوفان کی وجہ سے کئی روز سے شدید بارش اور تباہ کن سیلاب نے جنوبی چین کو بری طرح متاثر کیا ہے. مقامی انتظامیہ کے مطابق کم از کم 141 کارخانوں کو نقصان پہنچا, تاہم کوئی رہائشی مکان منہدم نہیں ہوا. موسمیات سے متعلق خبر دینے والی چین کی ایجنسی نے شدید بارش اور طوفان کے سلسلے میں ایک وارننگ جاری کی ہے جس کے تحت اس ماہ کی آخر تک جاری رہنے کا امکان ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ اگر چین نے یوکرین کے خلاف حملوں میں استعمال ہونے والا سامان روس کو سپلائی کرنا بند نہیں کیا تو وہ کارروائی کرے گا. بیجنگ میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے اعلی سفارتکار نے کہا کہ انہوں نے اپنے ہم منصبوں کو یہ واضح کر دیا ہے کہ ایندھن کی سپلائی میں مدد کر رہے ہیں جو سرد جنگ کے بعد سے یورپ کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مغرب بنگال کے ترائی والے علاقوں اور اڈیشہ میں شدید گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. بہار, جھارکھنڈ, رائل سیما, کرناٹک, تمل ناڈو, کیرلا, ماہے, کونکن, اتر پردیش, ساحلی آندھرا پردیش اور یانم کے دور دراز علاقوں میں اگلے 4 سے 5 دن کے لیے گرم لہر کے جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے. محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ کل تک مغربی آسام, میگھالیہ اور تریپورہ میں گرمی اور ہبس کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے, جبکہ 1 مئی تک کیرلا, ماہے, ساحلی کرناٹک, ساحلی آندھرا پردیش, یانم اور کونکن میں اسی طرح کے حالات بنے رہیں گے. اسی دوران محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, جموں کشمیر, گلگت, بلتستان, مظفر آباد میں بھی کل بارش اور اولے گرنے کی پیش گوئی کی ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت کے لیے بجلی کڑکنے اور دھول بھری آندھی کی پیش گوئی کی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ میں اکانا اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. لکھنؤ کی جانب سے راجستھان رائلز کو جیت کے لیے 197 رن کا نشانہ دیا گیا تھا جسے اس نے 18 اوورز اور 5 گیندوں میں 3 وکٹ پر 199 رن بنا کر حاصل کر لیا. کپتان سنجو سیمسن نے راجستھان کے لیے سب سے زیادہ 71 رن بنائے اور وہ آخر تک آؤٹ نہیں ہوئے. آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور سے ہوگا. یہ میچ سہ پہر 3:30 بجے شروع ہوگا. آج کے دوسرے میچ میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ سن رائزرز حیدرآباد سے ہوگا. یہ میچ چنئی میں ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی.
شکریہ آسیہ. راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں جگہ دی ہے. روزنامہ ملاپ نے اتراکھنڈ کے جنگلوں میں لگی بھیانک آگ سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار کے مطابق فوج اور بھارتی فضائیہ کے ہیلی کاپٹرز آگ بجھانے کے کام میں مصروف ہیں. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بھارت اور ایران کے درمیان دفاعی تعاون کے منصوبے پر تبادلہ خیال سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار کے مطابق دونوں ممالک نے مغربی ایشیا اور بر صغیر کی صورتحال پر بھی بات چیت کی. روزنامہ پرتاپ نے ممبئی شمال وسط کی سیٹ سے پونم مہاجن کا ٹکٹ منسوخ کر کے سابق سرکاری وکیل اجول نکم کو امیدواری دینے کی خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اجول نکم نے ممبئی دہشت گردانہ حملے, ممبئی سلسلہ وار دھماکے, پرمود مہاجن کیس جیسے اہم معاملوں میں حکومت کی پیروی کی.
آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. عام انتخابات کے تیسرے مرحلے کے لیے انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے. بڑی سیاسی پارٹیوں کے سینئر لیڈر ملک بھر میں ریلیوں اور روڈ شوز کے ذریعے ووٹروں کو راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. بی جے پی کے سینئر رہنما امت شاہ نے قبائلیوں کو بنیادی حقوق کا یقین دلایا ہے. کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی نے قبائلی لوگوں کے لیے ایک خصوصی بجٹ کا وعدہ کیا ہے. محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال کے ترائی والے علاقے اور اڈیشہ کے لیے انتہائی گرم لہر کے حالات کے تناظر में रेड अलर्ट जारी किया है। शिमाल मगरबी भारत में बारिश होने का इम्कान है। ईरान ने जब्त किए गए तिजारती जहाज के भारतीय अमले को कौंसिलर रसाई की इजाजत दे दी है। इस जहाज के अमले को जल्द ही रिहा किया जा सकता है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।